I have already decided that all Asian with the British citizen we must leave Uganda. I think Uganda will benefit if Asian are out of Uganda.
یہ آواز ہے 70 کے دشک میں یوگانڈا کے تاناشاہ رہے ایدی امین کی، جو یہ گھوشنا کر رہے تھے کہ یوگانڈا میں ورشوں سے رہ رہے برٹش پاسپورٹ دھاری ایشیائیوں کو 90 دن کے اندر یوگانڈا چھوڑ دینا چاہیے۔ 6 فٹ 4 انچ لمبے اور 135 کلو وزن والے امین کو حال کے وشو اتہاس کے سب سے نردئی اور کرور تاناشاہوں میں گنا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں یوگانڈا کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے ایدی امین ملٹن اوبوٹے کو ہٹا کر ستا میں آئے تھے۔ اپنے 8 ورش کے شاسن کال میں انہوں نے کرورتا کے جتنے پرتیمان گڑھے، آدھونک اتہاس میں اس کے اداہرن بہت کم ہی ملتے ہیں۔ 4 اگست 1972 کو ایدی امین کو اچانک ایک سپنا آیا اور ٹورورو میں سینک ادھیکاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ وہ سارے ایشیائیوں کو ترنت اپنے دیش سے نکال باہر کریں۔
ایشین ہیو کیپٹ دیمسیلوز اپارٹ ایز اے کلوزڈ کمیونٹی اینڈ ہیو ریفیوزڈ ٹو انٹیگریٹ ود یوگانڈن افریکنز۔
ایشیائیوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رکھا ہے اور انہوں نے یوگانڈائی افریقیوں کے ساتھ ملنے جلنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ ان کی سب سے زیادہ رچی یوگانڈا کی ارتھ ویوستھا کا شوشن کرنے میں رہی ہے۔ انہوں نے گائے کو دوہا تو ہے لیکن اسے بھوجن کھلانے کی تکلیف گوارا نہیں کی ہے۔
شروع میں امین کی اس گھوشنا کو ایشیائی لوگوں نے گمبھیرتا سے نہیں لیا۔ انہیں لگا کہ امین نے اپنے سنک پن میں یہ اعلان کر دیا ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں انہیں پتا چل گیا کہ امین واقعی انہیں باہر نکالنے پر اتارو تھے۔ بھارت سرکار نے استھتی کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ودیش سیوا کے ایک ادھیکاری نرنجن دیسائی کو وہاں بھیجا۔ دیسائی یاد کرتے ہیں،
ماحول بہت خراب تھا، کافی پینک تھا، ڈسٹریس تھا، کیونکہ کافی لوگ تو یوگانڈا سے بھی باہر نہیں گئے تھے کبھی، اور کبھی ایسٹ افریقہ سے باہر نہیں گئے تھے، اور سڈنلی ان کو سب چھوڑ کے جانا پڑا، اور گورنمنٹ نے کوئی بھی انسٹرکشن ایشو نہیں کی تھی کہ وہ کیا لے جا سکتے کیا نہیں لے جا سکتے۔ مگر جو سمارٹ لوگ تھے انہوں نے کافی طریقے اپنائے اور کافی اپنا پراپرٹی اور پیسے فنڈز باہر نکال دیا۔
امین کا یہ فیصلہ اتنا اچانک تھا کہ یوگانڈا کی سرکار بھی اس کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کچھ امیر ایشیائیوں نے اپنے دھن کو خرچ کرنے کا نایاب طریقہ نکالا۔
جو لوگ بہت پیسے والے تھے انہوں نے سارے فیملی کے لیے راؤنڈ دا ورلڈ ٹکٹس لے لی فرسٹ کلاس کی، ساتھ میں وہ ہوٹل بکنگ اور ایم سی او کی طرح لے لیا، کیونکہ وہ بعد میں ریفنڈ کر سکتے ہیں، تو ایسے پیسے نکال دیے۔ کسی نے ڈائریکٹلی فنڈ ٹرانسفر کر دیے، کسی لوگوں نے کار کے اندر جویلری اور پیسے سب نکال کر کینیا چلے گئے، اور کسی لوگوں نے فوج سے پارسل کر دیا۔ فوج سروس اچھی تھی کہ کافی لوگ کو جویلری آپ کو مل گئی لندن میں، اور کوئی لوگ ایسے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ واپس آ جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جویلری اپنے گارڈن میں چھپا دی، وہ تو چلی گئی۔ مگر کافی لوگوں نے بینک آف بروڈا میں سیف ڈپازٹ والٹ میں رکھ دی تھی، اور یہ بینک نے بہت سنبھال کر رکھا، اور جب موسیوینی گورنمنٹ آئی پاور میں تب کافی لوگ آئے اور جویلری لے گئے واپس۔
نارڈن داوود یوگانڈا کے ایک اسکول میں ادھیاپک تھے، ان کی پتنی کے رشتے دار پاکستان سے آتے تھے۔
All Asians started lining up outside the offices of various embassies, and I am very grateful to all those embassies. India,
سبھی ایشیائیوں نے کئی دوتاواسوں کے باہر لائن لگانی شروع کر دی۔ کینیڈین دوتاواس کے باہر بھی بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں آویدن دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب میرا نام استھانی اخبار میں چھپے تاکہ میں وہاں انٹرویو دینے کے لیے جا سکوں۔
Invited for my number to appear
in the کہنا تھا کہ جن کو وہ لوگ انٹرویو میں بلائیں گے ان کے نام اخبار میں دے دیے جائیں گے۔ میں انتظار ہی کرتا رہا لیکن کینیڈینز نے مجھے نہیں بلایا۔ پھر میں نے وہاں گیٹ پر کھڑے ایک کالے شخص کو اندر جانے کے لیے رشوت دی۔ میں اندر گھسنے میں سفل ہو گیا۔ वहां मौजूद एक महिला ने मुझे बताया कि मेरा आवेदन इसलिए सफल नहीं रहा क्योंकि मैं एक अध्यापक था और कनाडा को अध्यापकों की जरूरत नहीं थी। दूसरे, मैं युगांडा का नागरिक था और उनकी नज़र में मुझे बाहर निकाले जाने का खतरा नहीं था, जबकि ये वास्तविकता से बहुत दूर था।
कई दिनों तक कई दूतावासों की हाक छानने के बाद आखिरकार दाऊद को ऑस्ट्रेलिया ने वीजा दिया था। इसी तरह गीता वॉट्स को वो दिन अभी तक याद है जब वो लंदन जाने के लिए एंटेबे हवाई अड्डे पहुंची थी।
We were given 55 pounds. That's all he was allowed to take with him. It was just unbelievable, you know, after everything that he earned, he was just left with 55 pounds. When we first got to the airport, people's luggage was opened out and
हम लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए सिर्फ 55 पाउंड दिए गए थे। जब हम हवाई अड्डे पहुंचे तो लोगों के सूटकेस खोल खोल कर देखे जा रहे थे। उनकी हर चीज बाहर निकाल कर फेंकी जा रही थी ताकि वो देख सकें कि उसमें सोना या पैसे तो छिपे नहीं रह गए हैं। पता नहीं किस वजह से मेरे माता पिता ने मेरी उंगली में एक अंगूठी पहना दी थी। हमसे कहा गया कि मैं अंगूठी उतार कर उन्हें दे दूँ। अंगूठी इतनी कसी थी कि मेरी उंगली से उतर ही नहीं रही थी। आखिर में उन्होंने उसे काट कर मेरी उंगली से अलग किया। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि जब अंगूठी को काटा जा रहा था तो ऑटोमेटिक हथियार लिए सैनिक हमें घेर कर खड़े हुए थे।
बहुत से एशियाई लोगों को अपनी दुकानें और घर ऐसे ही खुले छोड़कर आना पड़ा था। उन्हें अपना घर का सामान बेचने की इजाजत नहीं थी।
कंपाला एयरपोर्ट था एंटेबे, कंपाला से कुछ 20 माइल दूर है। इस रास्ते में 5 रोड ब्लॉक्स थे आर्मी के, तो वहाँ कुछ चीजें ले लेते हैं और वो रिसीट भी देते थे। मेरे पास रिसीट है, इसमें लिखा है कि 5 वेस्ट निकाल ली है। तो ये छोटी छोटी चोरियां कर लेते थे वहाँ। किसी को अपने घर, फर्नीचर, गाड़ी, दुकान का सामान सब ऐसे ही रखना था, कुछ बेच नहीं सकते थे।
मैंने निरंजन देसाई से पूछा कि एशियाई लोगों द्वारा छोड़ी गई बेपनाह संपत्ति का आखिर हुआ क्या।
गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, किसी आर्मी वालों ने ले लिया, किसी मिनिस्टर के, ऐसे ही करप्शन में सब। आम आदमी तो कुछ मिला नहीं है, उनको तो बेकारी हो गई, क्योंकि मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इकोनॉमी वह देश। ये अजीब बात है, ये जब मुफ्त की चीजें मिलती थी ना, ये आर्मी वाले उसको बोलते थे बांग्लादेश। बांग्लादेश उसी टाइम लिबरेट हुआ था, तो जो भी एशियन की प्रॉपर्टी मुफ्त में मिली उसका नाम उन्होंने बांग्लादेश रखा था। सुनाई पड़ता था, हमने इतना बांग्लादेश किया, हमने इतना बांग्लादेश किया।
इस पूरी घटना से दुनिया में इदी अमीन की छवि एक नीम सनकी शासक के रूप में फैल गई। उनकी क्रूरता की और कहानियां भी बाहरी दुनिया को पता चलने लगी। अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केएम्बा ने एक किताब लिखी, ए स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी अमीन, जिसमें उन्होंने अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से लिखे कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली।
अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल समुदाय के बीच ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लिवर, नाक, होंठ और गुप्तांग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री किगाला को गोली मारी गई तो उनकी आंखें निकाल ली गईं और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया।
केम्बा ने यह भी लिखा कि अमीन ने कई बार उनके और दूसरे लोगों के सामने शेखी बघारी थी कि उन्होंने मानव का गोश्त खाया है। एक और मौके पर उन्होंने एक युगांडन डॉक्टर को बताया था कि मानव का गोश्त तेंदुओं के गोश्त से अधिक नमकीन होता है। अमीन के एक पुराने नौकर मोसेस अलोगा ने कीनिया भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर आज के युग में विश्वास करना मुश्किल है। अमीन के समय में युगांडा में भारत के राजदूत रहे मदनजीत सिंह अपनी किताब कल्चर ऑफ द सेपुलक्रे इदी अमीन्स मॉन्स्टर रिजीम में लिखते हैं।
अलोगा ने बताया, अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ मुझे ही उसके अंदर घुसने की इजाजत थी और वो भी उसे साफ करने के लिए। अमीन की पांचवी बीवी सारा क्योलाबा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा। मैं थोड़ा झिझका क्योंकि अमीन ने मुझे आदेश दिए थे कि उस कमरे में किसी को घुसने नहीं दिया जाए, लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए तो मैंने उस कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। कमरे के अंदर दो रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गईं। उसमें उनके एक पूर्व प्रेमी जीज गिटा का कटा हुआ सिर रखा था।
बहरहाल एशियाइयों को बाहर निकाले जाने के बाद युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीजों की भयानक कमी हो गई। कई उद्योग बंद हो गए। कंपाला के कई रेस्तरां अपने मेन्यू कार्ड की इस तरह हिफाजत करने लगे मानो वो कोई सोने की चीज हो। वजह थी कि शहर के प्रिंटिंग उद्योग पर एशियाइयों का एक अधिकार था।
जब एशियन चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खराब हो गई। कोई बार होटल में मैं रहा था तो कुछ बार ब्रेड नहीं है, कुछ बार बटर नहीं है, कुछ ये नहीं है। हालत काफी खराब हो गई थी और इकोनॉमी जस्ट क्रैश।
निकाले गए करीब 60,000 एशियाइयों में से अधिकतर को ब्रिटेन ने शरण दी। इन लोगों ने वहां कड़ी मेहनत की और बिल्कुल जमीन से शुरुआत करते हुए ब्रिटेन के रिटेल उद्योग की पूरी सूरत बदल दी।
सबसे ज्यादा नंबर ब्रिटेन में आए क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे। आई थिंक कुछ 23,000 और सो आए और हमारे नेशनल थे कुछ 11,000। वो दूसरे कुछ ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए। कनाडा सरकार ने बहुत मदद की थी। कनाडा सरकार ने आगा खान साहब की बातचीत के बाद कनाडा ने स्पेशल मिशन बनाया वहाँ कंपाला में और उन्होंने काफी लोग को इंटरव्यू किया और जो एलिजिबल थे उनको कनाडा का वीजा दे दिया और कनाडा गवर्नमेंट ने पैसेज भी फ्री दिया था उनको। तो काफी लोग कनाडा भी चले गए, कुछ फिर यूरोप चले गए, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई ब्राजील गया। मगर जो भी चले गए उन्होंने काफी अच्छा सेटल कर दिया सब जगह। आपने देखा ब्रिटेन में तो उन्होंने सारी रिटेल इंडस्ट्री चेंज कर दी।
इस त्रासदी पर सबसे आश्चर्यजनक रवैया था भारत सरकार का। उन्होंने इसे युगांडा के आंतरिक मामले की तरह ट्रीट किया और अमीन प्रशासन के खिलाफ विश्व जनमत बनाने की कोई भी कोशिश नहीं की। नतीजा ये रहा कि लंबे समय तक पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारत से दूर चला गया और ये समझता रहा कि उनके मुश्किल समय में भारत ने उनका साथ नहीं दिया। रेहान फजल, BBC दिल्ली।